नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देव प्रणमामि हरे श्री हा देवी का को हर गद गद जाते जाते भक्त पूरी दंडवत हास्य प्रसाद मबुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणे जननन्ति मंदे कृतेन्दीवरम जड्डं जागुडरोच संग विदध तंग पट्टं बरस्वेश्या वृंदारण्य निवासिनं हृदिल सद्दामाभिरामोदरम राधास्कंद निवेशित जलप्रियं नायं भक्त्या विहीनापराधलक्षे चित्ताश्च कामादितनुं मत्ते कामये त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्माननुभिक्षुमन्दं कृपाम्बुदिर्जा परदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमास्तु श्रीचैतन्य मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले रूपः कदा मह्यं ददाति यं प्रव्रजन्तमन्तेतमपेतति द्वैपायनो विरहकाकरया जिहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदो भूतलिदयम् भजामि राधाम अरविंद नेत्रं स्मरामि राधाम मधुरस्मिताभ्यां पदामि राधाम करुणा भरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि कल हम लोग गए थे यहाँ पर गीता के संबंध में हम लोगों ने कहा कि उसको हम लोगों ने क्लैकिंग इसलिए किया कि हमारी बात को अविरोधी होने पर भी वो उस बात को स्वीकार कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने ताली बजाई। इसलिए नहीं कि वो खूब कोई अच्छा चीज बता, नारायण के स्मरण को वो अपना अंतिम बात बताया,
वो तो भक्ति का ही विरोधी कई कई बात कहती,
किंतु थोड़ा सा हम लोगों की बातों को
हाँ वो माना है,
इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा उसको उत्साहित किया और उनके संबंध में
हाँ, वो तो
मथुरा का कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता कि कृष्ण का जन्म गोकुल में, किंतु वो मानता है। इसलिए यहाँ के जितने विद्वान हैं उसको मारना पीटना चाहते हैं, अपमान करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको उत्साहित किया जो हम लोगों के मत के अनुसार है। हाँ, पर आदमी पीछे बस। तो कल हमने पांच स्तर की बातें बतलाई थी, एक साधारण, एक गुह्य, एक गुह्यतर, एक गुह्यतम और एक सर्व गुह्य परम तत्व। इसमें बोला तो सर्वसाधारण के लिए साधारण इसमें बात क्या बतलाई, तुम्हें बोलो पति पाओ
आत्मा
आत्मा और अनात्मा का विचार, ये क्या चीज आत्मा है क्या चीज आत्मा है जान करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए यदि चलेंगे इस विचार को लेकर के, तो उनको साधु संग होने से फिर पीछे में कुछ भगवत भक्ति हो सकती। गुह्य क्या बतलाया गए छो तुम बोलो तो गुह्य गुह्य क्या बतलाया यदि नहीं समझेगा तो फिर कैसे
होगा
तो उसको क्या कहेंगे स्थित प्रज्ञा तो बतलाया कि तो उसको किस रूप में हमने व्याख्या की बोलो तो की बोले जादू सब तो सुनबे मन दिए तो नोट कर दे सब भविष्य तुम्हारा वही रकम कथा बोलते था। अनात्म और आत्मज्ञान के बाद में तो हो गया तो फिर बोलो तो
मानव जीवन निष्काम
करे परमात्मा संगे जोग युक्त हमारे हृदय में जो साक्षी के रूप में परमात्मा है पहले तो अनात्म आत्मज्ञान हो गया इसके बाद में जो ज्ञान है वो कैसे ज्ञान होगा वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते चित्त शुद्ध होगा और दुख में और सुख में बराबर रहेगा चित्त प्रग्रस्य क्या भाषा तिमासिक बजे किम इत्यादि में जो उत्तर दिया गया है कि दुखेशु अनुदिग्मना सुखेशु विगत स्पृहा और यथा कुर्मंगानी व सर्वशः कुर्म जैसे अपने अंग को कभी बाहर में लाता है और कभी भीतर में संकोच कर देता है ऐसे कभी विषयों को इच्छा के अनुसार में ग्रहण किया नहीं किंतु उसे अनाशक्त रहेगा इसलिए कर्म के फलों में अनाशक्त रहेगा कर्मण्यवाधिकारस्ते कहा कर्म के फल में अनाशक्त रहकर कर्मों को करके मुक्ति के लिए जो चेष्टा करते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं उसको लाभ वो ब्रह्म ज्ञान क्या है उसके लिए कौन सा श्लोक बोला ब्रह्म भूत ये उसका अंतिम उपसंहार तीसरा गुह्य तर गुह्य तर क्या बतलाया
परमात्मा
अब वहां तक तो ब्रह्म ज्ञान था अब ध्यान योग रहेगा और परमात्मा से संबंध रहेगा और परमात्मा के प्रति उसकी भक्ति होगी उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम जत करोषी जदस नासी ये सब रहेगा यज्ञार्थात कर्मणु भी रहेगा तो ये सब चीजें जो है परमात्मा के साथ अनुशीलन किंतु शुद्ध भक्ति नहीं हुई अभी ये सगुण उपासना है सगुण उपासना इसलिए इसके द्वारा शुद्ध भक्ति नहीं है इसलिए इसको बतलाया और इसमें बतलाया उनके साथ संबंध करने अनन्य चेत अनन्य चिंतयंतो मां प्रजुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां अभियुक्त युक्त किससे परमात्मा से अभी भगवान से कुछ नहीं अभी है ने? और तपस्या भेद को जोगी ज्ञान जोगी नाम सर्वेशान वो जोगी लोग रहते हैं भगवान यदि हम लोग कृष्ण से अपने को योग से संबंध करते हैं प्रेम के योग से तो उसको जोगी नहीं कहते उसको क्या कहते हैं उसको भक्त कहते हैं भागवत कहते हैं प्रेमी कहते हैं किंतु तब तक अभी योगी है इसलिए वो जोगिनां सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना अंतरात्मना अंतरात्मा से संबंध किसका रहेगा अंतरात्मा के जो साक्षी प्रभु जो हैं कौन है परमात्मा है उनके साथ में योगा युक्त होगा, तो ये हो गया गुह्यतम। और गुह्यतम नौम अध्याय का भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग। किंतु शुद्ध भक्ति योग अभी रस रहित है, शुद्ध भक्ति योग है किंतु अभी रस युक्त अभी नहीं है। और सर्वगुह्यतम में रस युक्त, वहां पर भक्ति की चरम अवधि मनमना भव इत्यादि, मनमना भव श्लोक में अंतिम भी है, गुह्य गुह्यतर मैंने सभी कुछ, और एक तरह से तात्म वो करो नहीं तो ये करो नहीं। इस तथ्य को तुम लोग अपना ले, यदि गीता के संबंध में कहीं कुछ बोलना पड़े इसमें दे दो चार समझ करके यदि बोल दे तो बहुत ही अच्छा हो। अब हम लोग बृहद भगवतान आरंभ करे हम लोग अभी तक बृहद भगवतामृत से अर्चा के संबंध में कुछ अनुशीलन कर रहे थे। तो अर्चा के संबंध में कुछ बातें ऐसी शास्त्रों में है दो चार जो भक्ति के विरुद्ध जान पड़ती है, उसके लिए उन्होंने बतलाया। जो लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं अर्चन और उनकी मूर्ति में और भगवान में भेद मानते हैं और कहते हैं कि इसमें प्रभु जी का अधिष्ठान है तो काठ है तो पत्थर है तो मणि मुक्ता सोने का मूर्ति, ये किस चीज की मूर्ति है? सोने की है। अरे सोने की है ना, राधा कृष्ण की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है, सोने की मूर्ति नहीं है राधा कृष्ण। तो ऐसा ज्ञान जिनको नहीं होता इस रूप में पूजा करते हैं तो उसकी पूजा को भगवान ग्रहण नहीं करते। दूसरी बात, वैष्णवों की निंदा करते हैं, उनके चरणों में अपराध अवज्ञा करते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान ऐसे लोगों की पूजा को ग्रहण नहीं करते। शरीर में आत्मबुद्धि है, जल में तीर्थ बुद्धि है, किंतु वैष्णवों के चरणोदक में और उनके महाप्रसाद जो महा महाप्रसाद हो जाता है उसमें भगवत बुद्धि नहीं है और वैष्णव में जात बुद्धि है, गुरु में भी जाति बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, ये हमारे गुरु जी मनुष्य हैं, ऐसे लोग नारकी हैं। अर्चे शिलाधु गुरु सु नरवती वैष्णव जाति बुद्धि विष्णु आ वैष्णवानं पद पठने अम्ब बुद्धि तिथे अम्ब बुद्धि विष्णु आ वैष्णवानं सकल कलुषहेश शब्द सामान्य बुद्धि, शब्द सामान्य बुद्धि थे स जाति नरकं स नारकी भाषा स नारकी सब। तो जो लोग ऐसा रखते हैं उन लोगों के लिए जो शिला में मान लें कि अभी हम लोग किसी बात के लिए झगड़ने लगे और ठाकुर जी की मूर्ति वहां है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे वो शिला है पत्थर। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई झगड़ने लगा या कोई प्रणाम किया तो उसको आशीर्वाद देने लगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? अवज्ञा हुई ना। गुरु जी के सामने किसी को आशीर्वाद देना, उसको सांत्वना देना या उसको शासन कर मैं तुम्हें देख लूंगा, और गुरु जी के सामने, तो इसका मतलब है गुरु जी को वो मनुष्य आधारण मनुष्य मानता है, इसका उसके चरणों में अपराध हो। इसलिए गुरु जी के सामने न तो किसी को सम्मान दे, न तिरस्कार करे, न कुछ करे, उस समय गुरु जी के ऊपर में छोड़ दे। ऐसे ही ठाकुर जी यदि सामने हैं, कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग यदि इनको भगवान मानते हैं तो क्या चाहिए? किसी पर हम शासन करेंगे, किसी को गाली देंगे, किसी को कुछ करेंगे? नहीं, वो सब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। जो प्रभु मालिक हैं वो सब कुछ करने वाले हैं, हम लोग चुपचाप ही आ रहे हैं, नहीं तो अवज्ञा उनकी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति अर्चन करता है तो वो अर्चन उसका बेकार कार्य। उसी तरह से ठाकुर जी का चरणामृत है, वैष्णव का चरणामृत है, ठाकुर जी का चरणामृत है, और वैष्णव का चरणामृत क्या है? हाँ, महाचरणामृत है। ठाकुर जी का प्रसाद महाप्रसाद है, और यदि सचमुच में उनका कोई प्यारा भक्त हो, सचमुच में, तो वो महाप्रसाद है। जिसको ऐसी बुद्धि नहीं है, अरे ये वैष्णव हैं ठीक है, किंतु ये कायस्थ जाति के हैं या शूद्र जाति के, ये वैष्णव भक्त हैं, उच्च कुल के नहीं, ब्राह्मण नहीं। हमारे गुरु जी ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी बहुत ऊंचे ब्राह्मण हैं, कुलीन ब्राह्मण, भट्टाचार्य सत्ताचार्य हैं। ऐसा यदि कोई समझता हो, और आपके गुरु कैसे हैं? आपके गुरु जी तो बनिया हैं कि क्षत्रिय हैं कि शूद्र हैं? ऐसा बुद्धि यदि गुरु में रखता है तो ये नर बुद्धि हो गई, उसकी अवज्ञा और उसकी निंदा हुई गुरु जी। ऐसे लोग यदि अर्चन करते हैं तो वो भस्म में घी ढालने के बराबर होता है। ऐसे सब चीजें बतलाई गई। कहते हैं जैसे ये सब तो लिखा है, इसलिए अर्चन नहीं करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी अर्चन करते हैं, जिनको वैष्णव का सम्मान का ज्ञान नहीं होता है, ठाकुर जी को ही ठाकुर जी कहते हैं। होता ऐसा अधिक है, इसलिए शास्त्रों में सावधानी दी गई है। इसका मतलब नहीं है कि अर्चन करने वाला अधिकारी ही गड़बड़ का है और अर्चन नहीं करना चाहिए, ये करना नहीं है। अर्चन के बिना कल्याण नहीं होगा, किंतु उसमें जो जो दोष है उसे सावधान किया गया, इसलिए ये नहीं कर रहे हैं ये तुम अर्चन मत करना, अर्चन करो किंतु इनसे इन चीजों को दूर करके। कहते हैं कि ठाकुर जी के अर्चन की तो बात ही क्या, एक तीर्ण को भी यदि भगवत बुद्धि से प्रणाम किया गया, उनको भगवत बुद्धि से अर्चन किया गया, सम्मान दिया गया, तो वो सम्मान किसका होगा?
भगवान का।
एक कागज है इतना बड़ा, कागज का मूल्य क्या है? कितने बड़े पीस का मूल्य मान लिया कि यह 4 पैसा हो या 1 पैसा हो, और उसी के ऊपर में अपने हाथ से पेंसिल से ही एक राधा और कृष्ण जी की मूर्ति बना लो अपने हाथ से ही, और बना करके उसी चित्रपट को ऐसा ही बना दिया, एक भाव आ गया, कृष्ण बंसी लेकर के खड़े हैं, पैरों पर पैर रखे हुए हैं और बाएं तरफ में राधिका जी, ठीक से बना नहीं किंतु फिर भी वो एक ऊंचे स्थान पर रख करके और उनको साष्टांग प्रणाम किया, 2 पैसे का कागज और उसने थोड़ा सा ऐसा लिख दिया। अब उसको जो प्रणाम करता है, ये प्रणाम कहाँ पहुंचेगा? क्यों पहुंचेगा? वो थोड़े कागज भगवान है, अब वो क्यों पहुंचेगा? बतलाओ, मैं तो हो तो गया किंतु वो कागज का टुकड़ा थोड़े भगवान है, वो भगवान कैसे हो गया? वो राधा कृष्ण हो गया पेंसिल का बनाया हुआ। अरे सुनो देखो, इसमें ऐसा समझो भगवान अंतर्ज्ञानी है। अरे वो तो वहां पर एक छवि है, छवि न भी रहती कुछ
नाम से नाम नाम
रहती। और वहां पर मान ले कि कहीं कोई जा रहा है, भगवान का नाम स्मरण हुआ कि प्रभु आपकी हमारे ऊपर में दया नहीं है, ऐसा कहते थे साष्टांग प्रणाम कर रहा है। देखता जो कोई देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा, और वहां पर प्रणाम किया ठाकुर प्रभु आप हमारे ऊपर में कृपा कीजिए, तो वो प्रणाम भगवान क्या नहीं पहुंचेगा? और जहां पर कि वो विग्रह भी है, मूर्ति बना दिया, ठाकुर जी देखते हैं कि कागज के ऊपर में हमारी छवि अंकित कर करके, और प्रणाम तो मुझे कर रहा है, हमको कृष्ण समझ करके ये प्रणाम कर रहा है, वहीं से भाव को भावग्राही जनार्दन ग्रहण करके और उसको उसका पूजा जो भगवान साक्षात रूप में जो पूजा करने का फल है वो उसको मिलता है। इसलिए एक तृण को भी भगवान का संबंध जान करके, जैसे मोर पंख देखा और मोर पंख को साक्षात एकदम दंडवत प्रणाम किया और उसको उठाया, सिर पर रखा, यहाँ रखा, किस लिए रखा? मोर पंख के हिसाब से नहीं रखा, वो कृष्ण का इतना प्यारा ये चीज, ये मट्टी पर कौन डाल दिया, बस कृष्ण के लीला की स्मृति हो गई और इस पर इस पर यहाँ रखता है, हृदय में रखता है, कहाँ रखूं? उसको कोई चीज नहीं मिलती जे कहाँ रखूं। भगवान चट उसके भाव को ग्रहण करेंगे क्योंकि सर्वांतरी जानी है, बस उसकी पूजा को ग्रहण करेंगे। विग्रह पूजा का तात्पर्य ये है। और उत्तम महापुरुष यदि एक मोर पंख को देख करके भगवान की लीलाओं की पूर्ण स्मृति आ जाती है, तो राधा कृष्ण को देख करके, महाप्रभु को देख करके उनकी स्मृति नहीं आएगी, उनको साक्षात राधा कृष्ण समझ करके, जो राधा कृष्ण नहीं समझ पाते उन लोगों के लिए भस्म में घी डालना है। जो राधा कृष्ण की मूर्ति होने पर इतना सुंदर बंसी बजा रहे हैं, राधा जी पास में खड़ी हैं, बेंत लिए हुए हैं, त्रिभंगी खड़े हैं, कैसे भंगी से देख रहे हैं, और कभी तो भगवान का भाव नहीं आए, उन लोगों को धिक्कार। इसलिए वहां पर मूर्ति पूजा की निंदा यहाँ नहीं है, बल्कि उन भावों की निंदा है जिसको लेकर के वो करते हैं किंतु फर्स्ट में भी डालना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जब भगवान की पूजा की तो बात किया, एक किनकी क्यों भी भगवत भाव से यदि पूजा की जाए तो वो सब उसकी जितने भी मनोरथ है वो पूर्ण हो जाते हैं। विशेष करके वैष्णव लोग जिस चीज को देखने से भगवत स्मृति आ जाती है उसको ही प्रणाम करते हैं। संतों को किस लिए प्रणाम करते हैं? जहाँ के देख ले ऐसे कृष्ण वैष्णव प्रधान कौन है? जिसके देखने से ही कृष्ण की स्मृति हृदय में अपने आप आ जाती है और कृष्ण नाम अपने आप आने लगता है। एक होता है मान लिया कोई कृष्ण नाम कहने से जानबूझ करके चिढ़ता है ना, तो उसको देखते ही कृष्ण कृष्ण कहने लगे और चिढ़ने लग गया, ऐ मत कहो झूठे चोर लबार का नाम मत लो, तो वहां पर वो आभास हुआ, चिढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। जहां सचमुच में कृष्ण का भाव आ जाए, जैसे मोर पंख को देख करके भक्तों को अपने आप भाव आ जाता है, ऐसे वैष्णव को देखने से कृष्ण का भाव अपने आप आ जाता है, वो जनता और उत्तम महापुरुष भागवत है। तो कहते कि जिनके देखने से, जिनसी विग्रहों को देखने से भगवत भाव उपस्थित हो जाता है, स्मृति आ जाती है, भला ऐसे विग्रह का पूजन करना कभी निकृष्ट कार्य हो सकता है? ये कभी नहीं, भस्म में घी ढालने के समान कभी नहीं हो सकता। हाँ एक बात जरूर है, यदि वो सकाम उपासना है, बहुत से लोग ऐसे पूजा करते हैं सकाम भाव वाले, जो निष्काम भाव वाले और प्रेम वाले भक्त लोग नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? बहुत सा ऐसा अवसर होता है जो सकाम भक्त वाले, उसका पुत्र मर रहा है रोग से ना, अब मरने वाला है, अब वो ठाकुर जी के दरवाजे के सामने जाकर रोते हुए गदगद होकर के, प्रभु हमारे बच्चे को बचा, और अंतर हृदय से वो बोलता है ना? और ठाकुर जी उसको बचा देते हैं ना? बचा देते हैं। जिसको प्रेम की आकांक्षा है वो ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर के ऐसे कहेगा साधक, तो उसको आंख में आंसू नहीं आएगा और भावना नहीं आएगी, आएगी। इसीलिए नारद जी ने कहा, वो कोई भय से, कोई द्वेष से, कोई स्नेह से और कोई भक्ति से हमारी उपासना करता है, किंतु जो शत्रु भाव से करता है वो जल्दी तन्मय हो जाता है ना? और भक्ति भाव से तन्मय होने वाला बहुत देर, बहुत विलंब लगेगा, किंतु शत्रु भाव से एक साजी में तन्मय हो सकता। किंतु इसलिए ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम शत्रु भाव से उनमें तन्मय हो, वो कह रहे हैं जब शत्रु भाव में तन्मय होने से ही इनका ऐसा हो जाता है, तो भक्ति भाव से होने से नहीं जाने क्या हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं। अरे गोपियां तो काम से हो गई, यदि काम से कोई भगवान के प्रति ऐसा भाव हो सकता है, तो भाई प्रेम से यदि कोई करे तो फिर न जाने क्या हो जाए।
इससे बढ़कर है क्या काम से या प्रेम से?
कह रहे हैं साधारण लोग के लिए, साधारण आदमी नहीं समझता कि प्रेम क्या चीज है काम से। वो सबको प्रेम काम के रूप में या प्रेम ही को, एक स्त्री से काम भाव को प्रेम कहते हैं, निष्कपट रूप से ये प्रेम कर रहा है। कहां निष्कपट, आप कहा प्रेम है ही नहीं है, एकदम विशुद्ध काम मोह है, मोह काम भी नहीं मोह है। इसलिए कह रहे हैं कि कोई यदि भगवान का किसी भी प्रकार से सकाम भाव से भी पूजा और अर्चन करता है तो उसकी हानि कुछ होगी? एक हानि केवल होगी, विलंब हो जाएगा उसको असल प्रेम लाने में, इसलिए विलंब होगा। वो जो सकाम भाव से प्रभु के लिए जो प्रार्थना की थी, प्रभु उसको वो चीज देंगे और उसको भोगाएंगे। ध्रुव को भोगने में 36,000 वर्ष लग गया, अब 36,000 बीत गया है, 36,000 वर्ष के बाद में तब उनको वैकुंठ मिला। वो भी वैकुंठ कहाँ मिला? ब्रह्मांड के अंतर्गत में, और रस भरा प्रेम भरा कोई वैसे चीज नहीं मिली। जरूर कुछ उसमें भी सुख है, शांति तो है ही है, निर्विघ्नता है, कोई दुख का लेश नहीं है, किंतु अयोध्या में और ब्रज में जो प्रेम का भाव है वो उनको नहीं मिला। इसलिए सकाम भाव वाले को कोई हानि तो नहीं है, किंतु लाभ भी उतना नहीं, बहुत समय लग जाएगा, और अपनी कामनाओं को पूरा करने के बाद में तब उसको भाव, उसे बहुत कोटि कोटि जन्म भी जा सकते हैं। इसलिए ऐसे कामों में मत लगाओ। तो अर्चन का फल कभी भी जिस किसी भी रूप से तुम करो, कामना से करो, अथवा मान लो कि किसी वैष्णव के की निंदा करते हुए या अपमान कर दिया, अवज्ञा कर दिया, तो भी भगवान का अर्चन छोड़ नहीं रहा, लगा ही रहा, तो क्या होगा? यदि छोड़ा नहीं, लगा ही रहा और बीच बीच में अवज्ञा किया, तो कभी ना कभी कोई साधु जरूर आएगा दर्शन के लिए, तो आएगा और देखेगा तो उसको दया लग जाएगी, और उसको बड़े प्रेम से उसका बन करके उसको समझाएगा, उसका विरोधी होकर कर समझाने से नहीं समझेगा, इसलिए वो उसका बन जाएगा, उसकी बड़ी प्रशंसा कर देगा, वाह तुम तो बड़ी ठाकुर जी की सुंदर रूप से सेवा करता है। एक बात करना, यदि कोई वैष्णव आए ना तो ठाकुर जी का प्रसाद देना, और उसका सम्मान करना है, और सब बातें कहेगा, समझा देगा, बस उसका चित्त। क्यों? अरे वैष्णव की जो निंदा किया, जिस वैष्णव की निंदा किया, वो बड़ा कभी प्रसन्न हो सकता है? ये जो कोई चिंता करता है, ये अपने मन के भावना के अनुसार में करता है। वैष्णव ऐसा नहीं होता है। वैष्णव किसी का अपराध नहीं लेता। जैसे हरिदास ठाकुर जी को 22,000 में मारे जाने पर भी अपराध नहीं दिया, फिर नकसपुर ने इतना प्रहलाद महाराज जी को सताया तो भी नहीं दिया, मीराबाई के उसके पति और घर वालों ने उसे क्या नहीं किया, 20 तक दिया, तो भी अपराध माना? कभी भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इनको जरा दंड देना, ये कभी नहीं, तो फिर वैष्णव ही नहीं है वो। तो इसलिए कोई सी वैष्णव के प्रति उन्होंने अवज्ञा की तो उस वो उपेक्षा कर देगा कुछ दिन के लिए, किंतु उसका कल्याण काम ही करेगा, वो रहेगा, जैसे इसका कल्याण, उपेक्षा कर दिया, उसे बातचीत नहीं किया, उसका दिया वो नहीं दिया कुछ दिन, किंतु उसके लिए वो प्रार्थना करता है जैसे इसका भी कल्याण हो, इसलिए उसकी प्रार्थना से भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके कहते हैं कि ये उसके लिए प्रार्थना करता है। वाह, ये तो बड़ा दयालु है। बस प्रभु जी रिस जाते हैं, ठीक। मान लिया कि हमसे किसी ने झगड़ा किया और झगड़ा करके आज खाया नहीं, तो हमने देखा जे भाई उसका मित्र परेशानंद जी है, उससे थोड़ा सा उसका मेल है, मैंने परेशानंद को बुलाया, कहा जैसे भाई उसको जा करके देखो जी खाया कि नहीं, तो तुम्हारा मित्र है, कहना जैसे तुम नहीं खाएगा तो महाराज जी भी नहीं खाएगा और तुम्हारे लिए बड़े दुखी हैं, इसलिए तुम जिससे उसका मेल है उससे वो खा दे। तो हम लोगों का मेल किससे है? उनसे बढ़कर के तो प्रभु से और किसी से मेल है नहीं। तो वैष्णव लोग जो ऐसे होते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसका मंगल हो, क्योंकि संबंध में आ गया ना, जिस प्रकार से भी हो अवज्ञा किया तो भी नहीं के संबंध में आया, इसलिए उसको पूरा करते हैं। तब कहीं कहीं ऐसा होता है जो वैष्णव तो क्षमा कर दिया किंतु उनकी चरणों की जो धूलि है वो क्षमा नहीं करती, उसको कुछ दंड भोगाती है, जैसे कुष्ठ व्याधि का हो जाना, अद्भुत रोग का हो जाना, और किसी प्रकार का दंड जैसे गोपाल चपाल का हुआ या और लोगों का है, चक्रवर्ती का हुआ, हरदास ठाकुर का निंदक का हुआ, या और सब जगह देखा जाता है ऐसा हो जाता है। भगवान की चरण धूलि सहज, ये तो प्रार्थना कर देते हैं, यदि साधारण हुआ तब तो उसकी क्षमा कर देते हैं और थोड़े से भोगा करके और फिर उसको रास्ते पर लगा देते हैं, और यदि अपराध नहीं हुआ वैसा कठोर, थोड़ी सी अवज्ञा की या गुरुत्व लघुत्व देख करके विचार करके, उस पर भगवान की कृपा होती है और उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, रिपेंटेंस करता है, प्रायश्चित्त करता है, पश्चाताप करता है, उसका चित्त हो जाता है। अधिकांश ऐसा ही होता है, जैसे देखो दोष किया जमलार्जुन ने, नलकुबर मणिग्रीव नारद जी के प्रति, भागवत में लिखा नहीं है जो क्या अपराध किया, गाली दिया होगा, ये बदमाश कहां से आ गया, साले चपाटे जैसे जो सब गालियां ये भी दिया होगा, मद्दत जैसे गाली देते हैं ना, उनको होश रहता है, तो बदहोश थे, मदिरा पान किए हुए थे, और उनमें सबसे बड़ा भारी बाधा इन्होंने दिया, तो कह दिया ये लुचा लफंगा कहां से आ गया, ये नंग धड़ंग बदमाश, रंग में भंग कर दिया है, कुछ गाली दिया होगा जरूर, और अवज्ञा की, अंत संत बका। नारद जी ने सुना तभी तो कहा, जिसको कांटा कभी गड़ा नहीं उसको दूसरे का दुख कैसे मालूम, ठीक, तू ऐसा जड़ हो गया, तनिक भी ज्ञान नहीं, अरे कुबेर का पुत्र होकर के जो शिव जी के अत्यंत परम भक्त हैं, और मैं भी तुम्हारे बाप के यहाँ जाया करता हूँ, तुम हमें भी पहचानते हो खूब अच्छी तरह से, और तुमने ऐसी बात की, ठीक है। पृथ्वी गर्भ में उसको शासन किया है, अपने लड़के को हम कभी मारते हैं तो किस लिए मारते हैं? विद्वेष भावना से मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं ऐसे जो लंगड़ा अंधा हो जाए, आंख फोड़ देंगे। तो उसी तरह से शासन किया है, और शासन करके उसको अनुभूति का चांस दिया कि तुम 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष तक पेड़ बने रहो, और तुमको उसकी अनुभूति होगी तब तुम समझेगा सचमुच में ऐसा ही। किंतु चूंकि नारद जी का भी संपात था और नारद जी ने उसको अभी संपात दिया, तो नारद जी की दया लग गई। हमने मारा किसी को मार दिया मैंने, किंतु तुरंत दया आ जाएगी उसके प्रति, इसको मार दिया, इसको कष्ट दिया। ये नहीं कि आज मैंने बड़ी बहादुरी की, इनको मार करके दुरुस्त करके खूब अच्छा सा, बचने को भी नहीं ऐसा सोच सकता, मार करके उसको पिता में बड़ा कष्ट होता है। क्यों? कोई बात कर दिया तो उसे ऐसा होता, क्यों भाई ऐसा? इसने सोचा जब दंड दिया तो इसको कुछ देना भी तो चाहिए, जैसे प्रसन्न हो जाए। बच्चे को मार करके मैया लोला हाथ में दे देती है, या खाने के लिए रो रहा है ना तो हाथ में लड्डू दे दी, वो सिसकता हुआ रोता हुआ ऊँ करता हुआ धीरे धीरे चुप होकर के लड्डू ले लेगा, धीरे धीरे उसको ऐसे ऐसे थपथपा देगी गोदी में लेकर के, बेटा 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 कह करके मार तो दिया। और फिर जिस चीज के लिए वो जिद कर रहा था, जिस चीज को देना नहीं चाहती थी वो चीज भी दे देती है। ऐसे ही इनको दंड दिया, दंड दे करके किंतु क्या दिया, अमूल्य भक्ति रत्न दिया, प्रेमा भक्ति बैग ब्रज की भक्ति को दे। ऐसे साधुओं का स्वभाव वही यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि वो वैष्णव की निंदा भी करता है, अवज्ञा भी करता है, वैष्णव लोग परम दयालु, किसी का अपराध ग्रहण नहीं करते, सामयिक रूप से कुछ उसको दंड भले ही दे दें किंतु उसका उपकार जरूर करेंगे कुछ दिनों के बाद में। किंतु भक्तों में एक चीज है, उसकी निंदा क्यों कर रहे हैं? निंदा इसलिए कर रहे हैं भक्तों को भगवान का के साथ में क्रीड़ा करना और भगवान के साथ में खेलना दूलना, भगवान की सेवा करना, इसमें कोई विलंब होता है तो वो सह नहीं सकते, तुरंत भगवान का दर्शन करना चाहते, प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे, भगवान को आलिंगन करना चाहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के लिए लिखा, श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए श्याम बालक को देखा, पेड़ों की झुरमुट में खड़ा हुआ और त्रिभंग भाव से वो बंसी बजा रहा है, और महाप्रभु जी के प्रति आंखों से मानो निकट बुला रहा है, ऐसे ऐसे महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे खिसक रहा है, जब दौड़े तो वो अंतर ध्यान हो गया, महाप्रभु विलाप कर रहे हैं। विलाप किस लिए कर रहे हैं? पाया नहीं इसलिए ना, तुरंत पाना चाहते, एक सेकंड की देरी उनसे सज्ज नहीं होती है, एक मिनट की देरी हो जाए उनकी सेवा में उनके मिलने में, इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भागा है, पूजा जिस ढंग से ये कर रहा है इसके तो करोड़ों जन्म लग जाएंगे वहां तक सेवा करने, हाँ है इसका जन्म व्यर्थ किया, किंतु उसकी पूजा व्यर्थ नहीं होती, किसी सकाम भाव से करे, निष्काम भाव से करे, प्रेम से करे, विशेष प्रेम से करे, पूजा का फल जरूर होगा, जरूर फल होगा, इसीलिए वो पूजा का फल तो है, किंतु उसमें जो विलंब हो रहा है इस विलंब को वो सहन नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्र में उनको निंदा है, ये जहां जहां दोष है अर्चन में उस दोषों को दूर करके प्रीति के साथ में भगवान का पूजा करना चाहिए, सेवा करना। एक आदमी शिव विग्रह की सेवा कर रहा है ना? और एक आदमी रघुनाथ और रूप की भांति भावनामयी सेवा कर रहा है, और भावनामयी सेवा करके अधीर हो रहा है, अर्चन में उतनी अधीरता जल्दी नहीं आएगी, और विशेष करके यदि वैसा कोई भाव अर्चन में, तो स्थूल वस्तुओं का संग्रह करके तब पूजा करना पड़ता है, कोई ना कोई त्रुटि अवश्यंभावी है, चाहे मानसिक हो और चाहे स्थूल हो। कहां का वो तुलसी है, भोग में जो दिया गया कहां से आया, वो चीज शुद्ध है कि नहीं है, मन पवित्र है कि नहीं है, ये सब तो अर्चन में विचार होता है। इसलिए उसमें ये सब विचार है उसमें। और नाम हरि नाम में जारे देखो तारक में खाईते सुईते जथा तथा नाम, खाने के समय सोते चलते फिरते गुटते बैठते किसी की रूप भगवान का नाम महाफलदायक। इन सब कारणों से कहीं कहीं शास्त्र में ऐसा लिखा है। फिर कहते हैं इसलिए कहते हैं कि भगवत अर्चन का फल कभी भी तुच्छ नहीं हो सकता, केवल विलंब होने की संभावना है यदि उसमें अवज्ञा हो, वैष्णवों की अवज्ञा हो, निंदा हो और भेद बुद्धि हो। तो जितनी पूजा होती है अधिकांश रूप में अधिकांश सकाम भाव से करते, शुद्ध आत्मशुद्धि के लिए कहा जाता है मंत्र भी, ना हम विप्रो न च नरपतिर ना भी वैष्णव शुद्ध, किंतु फिर भी देहात्म बुद्धि जाती है। हम लोग इतना कहते हैं सुनते हैं तो अभी कुछ कह देना अभी क्रोध हो जाएगा, कह दे किसी काले व्यक्ति को भी जिसको सौंदर्य ने तुम सुंदर नहीं है, उसका मन कैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे ही देहात्म बुद्धि, हम न काले हैं न गोरे हैं, काला गोरा है न काले हैं न गोरे हैं, न नाके हैं न लंबे हैं, बड़े सुंदर अंतर से, किंतु इस देह में आत्मभिमान हो गया। इसको छोड़ करके मूर्ति पूजा करनी चाहिए, इसको छोड़ करके नाम भी करना चाहिए, देहात्म बुद्धि एक अपराध है ना, किंतु होता हम लोग को हरिनाम में या किसी भक्ति के साधन में क्यों देरी होता है, विलंब होता है। वैष्णव निंदा छोड़ सकते हैं, गुरु की अवज्ञा भी छोड़ सकते हैं, कृष्ण नाम के बराबर शंकर का नाम नहीं है ये भी हम सम्मान लेंगे, किंतु वो छोड़ना, देहात्म बुद्धि छोड़ना, ये बड़ा भारी कठिन है। किंतु जो छोड़ देगा वही महाजन। इसलिए अर्चन का फल तुच्छ नहीं है। किसी त्रिश में फलदायक, किसी न किसी रूप में जरूर फलदायक है, किंतु ऐसे भावों को लेकर के करने से केवल विलंब होता है। तो उनका कल्याण कैसा होता है, हमने अभी कहा वैष्णव लोग गुणग्राही होते हैं ना, गुणग्राही न रहे ना तो वैष्णव ही नहीं। इतने आदमी बैठे हैं किसी न किसी रूप में किसी को दोष है, यदि गुरु जी ये देखने लगे कि कंबल का यह लोम जो है ये लोम निकल रहा है थोड़ा, उसको निकाल दें तो निकालते निकालते क्या होगा, अरे लोम से ही तो कंबल बना है, तो सब निकालते निकालते रहेगा क्या। इसलिए वैष्णव लोग यदि किसी हम लोगों का दोष देखने लग जाए, गनई थे दोष गुण नहीं पाओ, जब तो हूँ कर हो विचार, जब आप विचार करेंगे देखेंगे सचमुच हमारे अंदर में कोई गुण नहीं है, दोष ही दोष है। जो गुण जैसा दिखता है वो भी दोष ही है हम लोगों का, जैसा गुण जैसा ना, जैसे हमने किसी की प्रशंसा की तो अंतर से हमने प्रशंसा की है न, कि हमने ठट्ठा विद्रुप किया है न क्या किया है, ये कौन जाए। महाभागवत ही किसी की निंदा नहीं कर सकता, यदि महाभागवत हुआ तब, और वही प्रशंसा कर सकता है किसी की। साधारण लोगों के लिए किसी की प्रशंसा करना और वही तिनादपि सिनुच होना, तरुरपि सह सुनना, मानी मानद होना, ये बड़ा भारी कठिन है। तो कहते हैं कि वैष्णव लोग बड़े गुणग्राही होते हैं, वो साधारण लोगों के दोषों को तरफ नहीं देखते हैं, किसकी तरफ देखते हैं, केवल गुणों की तरफ। एक आदमी में हजार दोष है, ठाकुर घर में रसोई घर में गया और बड़े सुंदर स्वादिष्ट रूप से कुछ बना दिया, वाह इतना सुंदर तू रसोई बनाता है, वाह प्रशंसा करता है। उसके साथ साथ में और दो चार गुणों की प्रशंसा करता है। यदि नहीं होता ना तो हम लोगों के गुरु वर्ग इतने लोगों को लेकर के जो भजन करते हैं, दो भाई एक माता पिता के एक साथ में नहीं रह पाते, रहते हैं एक माता से एक पिता से उत्पन्न होने पर भी एक साथ नहीं रह पाते। और कहा इतने लोगों को विभिन्न विभिन्न रुचि, एकदम तीन और छह का संबंध लेकर के, और कब कैसी मति होती है, और उन सब लोगों को लेकर के रखना, ये साधारण बात है, बहुत बड़ा बात है। यदि वैष्णव लोग गुणग्राही नहीं होते,